श्रीमद् भागवतम नवा स्कंद अध्याय 10। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण सुनाई दे रहा है। हरे कृष्ण वो बंद करो। हरे कृष्ण उसको बंद करो उसको क्या श्रीमद् भागवतम नवा स्कंद अध्याय 10 शीर्षक परम भगवान रामचंद्र की लीलाएं। श्लोक क्रमांक 3। तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिर्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिर्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। श्लोक अर्थ तस्य भगवान रामचंद्र तथा उनके भाइयों का अनुचरितम दिव्य कार्यकलाप राजन हे राजा महाराज परीक्षित ऋषिभिः ऋषियों द्वारा तत्वदर्शिभिः परम सत्य को जानने वाले श्रुतम सुना गया ही निस्संदेह वर्णितम सुंदर ढंग से वर्णित भूरी अनेक त्वया तुम्हारे द्वारा सीतापतेहे सीता के पति भगवान रामचंद्र के मोहो बारंबार। अनुवाद हे राजा परीक्षित भगवान रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। क्योंकि आप सीतापति रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके हैं अतएव मैं इन कार्यकलापों का वर्णन संक्षेप में ही करूंगा, कृपया सुने। तात्पर्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा आधुनिक राक्षस जो डॉक्टरेट डिग्रीधारी होने के कारण अपने को उन्नत रूप से शिक्षित मानते हैं उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि रामचंद्र भगवान न होकर सामान्य व्यक्ति हैं, किंतु जो विद्वान है और आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त है वे ऐसे मतों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वे तो उन तत्वदर्शियों द्वारा प्रस्तुत किए गए भगवान रामचंद्र एवं उनके कार्यकलापों के वर्णनों को ही स्वीकार करेंगे जो परम सत्य को जानते हैं। भगवद गीता में 4.34 भगवान उपदेश देते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। गुरु के पास जाकर सत्य सीखने का प्रयास करो, विनीत होकर उससे प्रश्न करो और उसकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसके उसने सत्य का साक्षात्कार किया है। तत्वदर्शी बने बिना कोई व्यक्ति भगवान के कार्यकलापों का वर्णन नहीं कर सकता। अतएव कहने को तो अनेक रामायणे हैं, किंतु उनमें से कई प्रामाणिक नहीं हैं। कभी कभी भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों का वर्णन अपनी कल्पना, चिंतन या भौतिक भावों के आधार पर किया जाता है, किंतु रामचंद्र जी के की विलक्षणताओं को काल्पनिक मानकर उनका वर्णन नहीं करना चाहिए। भगवान रामचंद्र की कथा का वर्णन करते समय सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बतलाया, आपने भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों के विषय में पहले ही सुन रखा है, अतएव स्पष्ट है कि 5000 वर्ष पूर्व भी रामचंद्र की अनेक कथाएं या रामायणें थीं और अब भी अनेक हैं, किंतु हमें केवल तत्वदर्शियों द्वारा लिखित कथाओं को सुनना चाहिए। ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः, ऐसे तथाकथित पंडितों की किताबों को नहीं जो डॉक्टरेट डिग्री के आधार पर ज्ञानी होने का दावा करते हैं। यह सुखदेव गोस्वामी द्वारा की गई चेतावनी है। ऋषिभिर तत्वदर्शिनः, यद्यपि वाल्मीकि रचित रामायण एक विशाल ग्रंथ है, किंतु इन्हीं कार्यकलापों को सुखदेव गोस्वामी ने थोड़े से श्लोकों में सार रूप में प्रस्तुत किया है। ओम अज्ञानतिमिरांध। तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिः तत्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। हे राजन परीक्षित, हे राजा परीक्षित, भगवान रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। चूंकि आप सीतापति रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके हैं, अतएव मैं इन कार्यकलापों का वर्णन संक्षेप में ही करूंगा, कृपया सुने। आज श्री रामनवमी का बड़ा मंगलमय दिन है। रामायण प्रभु रामचंद्र की जो दिव्य लीलाएं त्रेता युग से चली आ रही है, 5000 साल पहले की बात है, और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि तुमने बहुत बार सुना है, इसीलिए मैं संक्षिप्त रूप में सुना रहा हूं। और उस समय भी रामायण बहुत ही पूरे विश्व में प्रचलित थी। द्वापर युग 8,64,000 साल की अवधि, और अभी कलयुग का 5000 साल, उसके पहले त्रेता युग में घटी ये जो सुंदर लीला है। इस संसार में भी हम देखते हैं कोई भी चीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाके वहां से तीसरे चौथे व्यक्ति जाने तक संदेश बदल जाता है। या उस संदेश देने वाले का जो उद्देश्य है वो कुछ और गलतफहमी हो जाती है। तो त्रेता युग से चली आ रही, लाखों सालों से चली आ रही ये लीलाएं, ये ग्रंथ ज्ञान, सकाले ने महता योगो नष्ट परंतप, काल के प्रभाव से धीरे 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 जो उसका मूल स्वरूप है, और आज जो हम यहां प्राप्त कर रहे हैं उसमें बहुत जोड़ना, बहुत चीज घटा देना, तो को पूरा दूसरा चीज हमें उपलब्ध हो सकता है, स्वाभाविक है। इलेक्ट्रिसिटी में भी पावर हाउस से यहां आने तक लॉस हो जाता है, ट्रांसमिशन लॉस, लॉस इन ट्रांसमिशन। इसी तरह से स्वाभाविक है कि एक लोगों से दूसरे व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति नष्ट हो सकता है, और इसीलिए भगवान ने जब देखा 5000 साल पहले तो अर्जुन को फिर से सुनाया, स एवायम मया प्रोक्त, स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन, वही चीज स एव अयम मया प्रोक्त मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातन, वही चीज मैं बता रहा हूं। भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम, बोलने वाले की योग्यता क्या होनी चाहिए और सुनने वाले की योग्यता क्या होनी चाहिए ताकि यह संदेश जैसा है वैसा बनी रहे। जब बोलने वाले में दूषित हो जाता है यह संदेश, या सुनने वाले में दूषित हो जाता है, सुनने वाले की योग्यता ठीक नहीं है, तो यह संदेश बदलने की संभावना है। तो बोलने वाले की योग्यता क्या है? तत्वदर्शी भी ही, जिसने तत्व का दर्शन किया है, जिसको भगवान की कृपा मिली है, उनका आशीर्वाद मिला है, तभी वो कह सकता है, नहीं तो वो कह नहीं सकता। भले कितना भी विद्वान हो, तर्को अप्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्न नासौ मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम, बहुत धर्म को जानना, धर्म एक ऐसी चीज है, इट इज डायनामिक, ये कोई लिख दिया एक बार लिख के रख दिया है नहीं, उसको किस तरह से लागू करना है समय समय पे, देश काल पात्र के अनुसार, बदलते समय में अलग अलग लोगों के लिए उपयुक्त तरीके से, बाहर से उसको अलग अलग तरीके से बताया जा सकता है, पर उसका उद्देश्य एक ही है, सार में बदल नहीं है। बहुत मुश्किल है ये, और जब तक वो योग्यता नहीं है, वो कृपा उपलब्ध नहीं है, तब तक नहीं होगा। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शी व्यक्ति से सुनना चाहिए ये। तत्वदर्शी कौन है? वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं, तत्त्वतः सब चीज को जानता है, एवं योविति तत्त्वतः जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योविति तत्त्वतः। तत्वतः जानना मतलब भगवान को पूर्ण रूप से जानना, भगवान के अलग अलग जो पहलू है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्म किस प्रकार से भगवान सर्वव्यापी है, सब जगह वो व्याप्त है। मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना, सब जगह व्याप्त है ब्रह्म के रूप में, ये उनका विराट स्वरूप। तो फिर परमात्मेति, हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में भी स्थित है, उपदृष्टा हनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषम परम। परमात्मा के रूप में हरेक उपदृष्टा, हरेक चीज को देखने वाले, आप नहीं देखेंगे शायद पर वो देख रहे, आप देख के भी नहीं देख पाएंगे, वो ना देखते हुए भी देखेंगे। अनुमंता, हर एक चीज को अनुमति देने वाले, भर्ता भोक्ता महेश्वर जो हरे के हृदय में बैठे हैं, और फिर भगवान, तो ये तीनों को तत्वतः जानता है वो तत्वदर्शी है। और भक्तियां माम भी जानाती आवान यशास्मि तत्वतः, और तत्व को जानने के लिए पूर्ण रूप से भगवान की, भगवान का भक्त होना चाहिए, भक्तो में सखा चेत, और भगवान के साथ एक संबंध होना चाहिए। भगवान के साथ संबंध हुए बिना और भगवान की भक्ति किए बिना ये नहीं जान सकते। उपनिषद का यही कहा, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधसा न बहुना श्रुते न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्यो। बड़े बड़े जगह से आपने सुना फिर भी उपलब्ध नहीं होगा। बड़े बड़े डॉक्टरेट डिग्री वाले विद्वान व्यक्ति, विद्वत्ता से बाल का खाल निकालने वाले, एक एक चीज को भी पूरा एनालिसिस करके बताएंगे पर फिर भी तत्व को जान नहीं पाएंगे। न मेधसा, बहुत बुद्धिमान, न बहुना श्रुते न, सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लेंगे फिर भी संस्कृत के विद्वान हो क्यों नहीं, कभी नहीं जान पाएंगे, कभी नहीं। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवानाम सोप्यस्ति यत् प्रपदसी न्यविचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजे। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं खुद, बहुत शक्तिशाली विद्वान, फिजिकल जिम्नास्टिक्स, किसी का शरीर इतना रबर जैसा होता है, जिम्नास्टिक्स कैसे भी कहां भी घुमाते हैं शरीर को, हम घुमाएंगे तो फिर अटक जाएगा ऐसा, उठा तो फिर बैठना मुश्किल, थोड़ा हाथ पैर घुमा दिए तो फिर ऐसा अटक जाता है, फिर बाद में 8 दिन तक शरीर हिलता नहीं। वो लोग ऐसे 3 ऊपर छलांग मार के गिरते हैं, फिर एक डंडे पे ऐसा खड़े होते, एक पैर पे खड़ा होते, जिम्नास्टिक। इसी तरह से कुछ लोगों का मन ऐसा होता है, मेंटल जिम्नास्टिक्स, एक शब्द को लेकर घुमा फिरा के अंत में क्या बोला वो समझ में भूल जाते हैं हम लोग, ऐसा अद्भुत कला बोलने में। ये करताल है पर इनके अंदर कला है कि ये कन्विंस कर देंगे आपको कि मृदंग है ये। चैतन्य महाप्रभु जानबूझ के अपने आदि लीला में यही लीला किए, निमाय पंडित सारे भक्तों को पकड़ देते, ठीक है तुम लोग बोलते हो ना चलो ये स्थापित करो, बड़े बड़े विद्वान, एक चीज बोलना, बोलो इसमें क्या गलती बताओ, कुछ गलती नहीं एकदम परफेक्ट है, नहीं गलती है बताओ, नहीं कुछ नहीं परफेक्ट है एकदम, फिर उसको तोड़ तोड़ के पूरा गलत साबित करते थे और बोलते थे अभी बोला एकदम, अभी जो बोला ना ये सही है, वो पूरा गलत था, इसमें कुछ गलती साबित करो, एकदम हो ही नहीं सकता इसमें गलती, उसको तोड़ तोड़ के कुछ नया चीज फिर से स्थापित करना। बोला हाँ ये तो सोचा ही नहीं था, ये सही है, पुराना वाला गलत था, और फिर दोनों बाद वालों को तोड़ के ओरिजिनल फिर से स्थापित करना। बोलते ये हमको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है, तो जो बोलता है वही सही है बस, ऐसी विद्वत्ता निमाय पंडित ने दिखाया पहले, और फिर जाके ईश्वरपुरी के पास बड़े नम्रतापूर्वक, मैं मूर्ख हूं, मुझे वेदांत पढ़ने का योग्यता नहीं है, मेरे गुरु ने इसीलिए कहा कि तू वेदांत का तेरा अधिकार नहीं है, तू चुपचाप नाम जप कर। नम्रतापूर्वक स्वीकार करना, क्योंकि ये बुद्धि क्या है, हमारी बुद्धि 450 ग्राम की बुद्धि, भले बहुत ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितना भी बुद्धि, हाथी जैसा दिमाग तो बड़ा नहीं होता ना, 450 किलो का दिमाग तो नहीं है किसी का, 450 ग्राम का ही है, पर उसके अंदर थोड़ा पेशी कुछ क्वालिटी गुणवत्ता ऐसा है, कुछ लोग ऐसा एक बार सुन लिए तो भूलेंगे नहीं, कुछ लोगों के अंदर, हर एक के अंदर एक एक कला कुछ दिया है भगवान ने, ऐसा स्मरण शक्ति या ऐसा वाक चातुरी, बोलते 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 हाँ हाँ करे, बाद में बोले क्यों क्या, मैंने क्यों किया पता नहीं, वो बोला हाँ हाँ लग गया, एकदम सही लगा मेरे को। तो ये होती है कला, पर इसके द्वारा नहीं, न मेधसा न बहुना श्रुते न शास्त्र भी पढ़कर, यही रामायण पढ़कर कंफ्यूज आता है, राम ने ऐसा क्यों किया, समझाना बहुत मुश्किल होता है लोगों को, और उसको बताने के लिए घुमा फिरा के नहीं ऐसा नहीं था, एक्चुअली जब वो कहते कि ऐसा किया तो उसका मतलब ऐसा है, ये मतलब ऐसा है, नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जो किया वही है, पत्थर से सेतु बांधा 100 योजन लंबा 80 योजन चौड़ा, बांधे बस, नहीं वो पत्थर कैसा तेला, क्यों नहीं तैर सकता है। कुछ चीजें साबित करना बड़ा मुश्किल है, कुछ चीजों को समझना बड़ा मुश्किल है, तो तत्वदर्शी न, जब तक ये तत्वदर्शी या भक्तिमय भाव से, क्यों ये जानना कि भगवान दिव्य हैं, हमारे जैसे नहीं है वो, भगवान की दिव्यता, भगवान का जो अस्तित्व है तत्वतः, ये जानना ही, तब जाके हमारे साथ उनके साथ संबंध जोड़ना, प्रेममय संबंध, भक्तिमय संबंध, यही जीवन का उद्देश्य है, यही एकमात्र उद्देश्य है। और ये जब तक भगवान की कृपा गुरु के द्वारा नहीं मिलेगी, तब तक इस सत्य को कभी नहीं जान पाएंगे। इसीलिए रामायण के शुरुआत में वाल्मीकि मुनि लिखते हैं, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परिपपृच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम। एक ही श्लोक में कहा है शुरुआत इसका रामायण का, तपस्वाध्याय निरतम नारदम, नारद मुनि के बारे में बोलते हैं, तपस्वाध्याय निरतम, एक तपस्या, बड़े तपस्वी हैं नारद मुनि, एक ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या किया है उन्होंने, उनके पिछले जन्म में देखेंगे भागवत में वर्णन है किस प्रकार की उन्होंने तपस्या की, भक्ति वेदांतों से श्रवण किया, जीवन भर उसको अपनाया तपह, और स्वाध्याय निरतम, हमेशा इस ज्ञान का स्मरण करते हुए इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास, स्वाध्याय निरतम। और मुनिपुंगवम का मतलब है स्थितधीर मुनि, और वाग्विदाम वरम मतलब समझाने में बहुत ही दक्ष, अच्छे तरह से देश काल पात्र के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार, पात्रता के अनुसार, उस व्यक्ति को क्या जरूरत है, कितना जरूरत है आगे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए, परफेक्टली समझा सकते हैं, ये दक्षता। तो वाल्मीकि की योग्यता, तपस्वी, एक ही शब्द उपयोग किया है वाल्मीकि का, तपस्वी, ये तपस्या, क्या तपस्या, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सबसे बड़ी तपस्या नम्र होना, नम्र हुए बिना ये ज्ञान प्राप्ति नहीं किया जा सकता, इसीलिए सनातन गोस्वामी ने दिखाया, संबंध आचार्य हमारे, के आमी केने आमाय जारे तापत्र इहा नाही जाने के मने हिता है, ग्राम्य व्यवहारे पंडित ताई सत्य मानी, आपन आरा हित अहित किछु ही न जानी। बोले मैं बड़ा पंडित हूं पर मैं कुछ नहीं जानता, मैं मूर्ख हूं, मैं कौन हूं, मेरा जीवन का उद्देश्य ये मैं नहीं जानता। तो जब तक ऐसे शरण नहीं गए तो वाल्मीकि मुनि एक शिकारी, मतलब इतने कठोर हृदय वाला जैसे मृगारी जैसा, पशुओं को मारना, मारने के बाद छटपटाते हुए देखकर आनंद लेना, ऐसा कठोर व्यक्ति, कठोर हृदय वाला। नारद मुनि की एक बार उनकी मुलाकात हुई और उसने नारद मुनि को, नारद मुनि के से प्रश्न पूछा। नारद मुनि ने उनको कहा कि ये सब तुम कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? बोले बस ये कर रहा हूं इसीलिए मैं कर रहा हूं। परिवार कहने लगे, बोले इससे कितना पाप होगा तुम्हें मालूम है? बोले ठीक है। पर और फिर उनको समझाए, उनको और जब नारद मुनि की कृपा हुई उन पर तो समझ में आया, अरे बाप रे इतना बड़ा पाप है ये। तो बोले अभी मैं क्या करूं इस पाप से निकलने के लिए? बोले तपस्या करो, राम नाम लो, बस राम नाम, राम नाम सबसे बड़ी तपस्या। बड़े नम्रता पूर्वक उस राम नाम को उन्होंने लिया और कर्मणा मनसा वाचा, केवल वचन से नहीं कर्म से और मन से पूर्ण रूप से इतना मग्न हो गए। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरियो आख्या आरना कोरियो मोने आशा, यह तपस्या है। उन्होंने ऐसा तपस्या किया अपने शरीर के बारे में चिंता न करते हुए उस आज्ञा का पालन करने, पूरा ध्यान पूर्वक राम नाम, यहां तक कि धीरे 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 चींटी आकर उनके सारे मांस को खाकर, सिर्फ हड्डी था बस, और पूरा एक ऐसा क्या बोलते हो, हाँ ढक गया पूरा, पर राम नाम आ रहा था अंदर से, मतलब पूरा शरीर नष्ट हो गया। और तब बाद में प्राचेतस, इसीलिए उनका नाम प्राचेतस, वरुण देव के द्वारा ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरुण देव की कृपा से वो पूरा पानी डाल के उसमें से पूरा निकाला, उनका फिर से उनको स्वरूप मिला अपना। और दूसरा वाल्मीक, वाल्मीक से निकले इसीलिए वाल्मीकि। और फिर वो तपस्या कर रहे थे, प्रभु रामचंद्र के समय भी तपस्या कर रहे थे, पर एक दिन प्रभु रामचंद्र भी, रामायण हो चुकी है, उत्तरकांड में ही आता है, वाल्मीकि ने रचना कब की? ये रामायण पूरा होने के बाद कई सालों तक प्रभु राम अपने अयोध्या में राज्य कर रहे हैं, सीता माता को भेज दिया वाल्मीकि के आश्रम में। और उस समय लव कुश भी जन्म लिए हैं। उस समय एक दिन वाल्मीकि ऐसे बैठे हुए थे, एकाएक नारद मुनि आ गए, एकाएक तीन चार अद्भुत चीज हुए उनके जीवन में उसी दिन, एक ही दिन में, सुबह से दोपहर तक दैववश कि आप ये ग्रंथ की रचना करो। पहले पहले नारद जी आए, ये सबसे बड़ा अद्भुत। अद्भुत क्या है? साधारणतः शिष्य गुरु के पास जाता है, आज गुरु आ गए हैं शिष्य के पास ढूंढते हुए। तो तुरंत नारदम परिपप्रच्छ, टाइम पास नहीं किए, कहां कहां से आ रहे हैं या कोई खाना पीना हो गया, कुछ नहीं, डायरेक्टली प्रश्न पूछे, कौन अस्मिन सांप्रदम लोके गुणवान वीर्यवान। तुरंत एक साधु का संग जब होता है तो फालतू बातें नहीं करनी चाहिए, ये क्या उसका क्या, आपको क्या लगता है मार्केट का भाव है आजकल क्या हो रहा है? नहीं, उसका पूरा लाभ लेना चाहिए। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, तो पूरा लाभ क्यों? डायरेक्टली पॉइंट पे आ गए। आज इस समय पृथ्वी पर अभी जहां आप दोनों, हम दोनों यहां बैठे हुए हैं, अब बताइए इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सारे सद्गुणों से संपन्न है, वीर्यवान, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च, धर्मज्ञ पूर्ण रूप से धर्म को जानता है, कोई भी कार्य धर्म के विरुद्ध नहीं करेगा, वो परफेक्ट, उसके हर एक विचार, उसके हर एक शब्द और उसके हर एक कार्य परफेक्टली धर्म के अनुसार है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म धर्म धर्म, रामचंद्र देखेंगे आप धर्मात्मा परफेक्ट, कितना भी हो जाए, भरत सर पटक पटक के बोल रहा है वापस आ जाओ, घुमा फिरा के विश्वा वशिष्ठ मुनि भी बोलने का प्रयास किए राम को घुमाने के लिए कि आ जाओ आप किसी तरह से आ जाओ, वो दशरथ मर गया है, अभी भरत स्वीकार कर लिया है, कई कई भी वापस ले लिए, बोले नहीं, धर्म 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 धर्म, बस धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से धर्म हमें बचाएगा, स्थापित कर धर्म संस्थापनार्था यह संभवामी योगी, तो धर्मज्ञ सही परिस्थिति में इस तरह में किस तरह से कार्य क्या करना चाहिए हमें धर्म के अनुसार। कृतज्ञश्च, कभी भूलना नहीं, एक व्यक्ति कुछ हमारे लिए किया है हम भूल जाएंगे पर करोड़ों जन्मों के बाद भी भगवान नहीं भूलते। कहां महाराज नृग, उनको शाप मिल गया था और किसी ने शाप देते वक्त ठीक है चलो ये राम, प्रभु रामचंद्र आएंगे तो ये हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण आएंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, भूलते नहीं है वो भी व्यक्ति जो चिपकली बन गया वो भी भूल गया, शायद अहल्या भूल गई, प्रभु रामचंद्र भूले नहीं। तो कृतज्ञश्च, कोई भी किया हुआ चीज उनके प्रति कभी भूलना नहीं वाला, एक आदर्श व्यक्ति रामचंद्र। इसीलिए रामचंद्र, कृष्ण को समझना बड़ा मुश्किल है, द्वापर के अंत में आए थे वो, सब टेढ़े लोगों के साथ सब टेढ़ा काम करना पड़ा उनको, तो समझना बड़ा मुश्किल है कभी कभी समझना कृष्ण को, पर रामचंद्र के बारे में आह, कोई मर्यादा पुरुषोत्तम, हमेशा मर्यादा को सामने राम पीछे, कृष्ण सामने मर्यादा पीछे, क्योंकि भगवान दिखाए कि मैं मर्यादा से परे हूं, तुम मुझे मर्यादित मत करो, तुम्हारे लिए सब है मेरे लिए नहीं, मैं इनसे परे हूं, मैं जो करता हूं वही धर्म है, ये समझना बड़ा मुश्किल है। पर प्रभु रामचंद्र परफेक्ट मर्यादा पुरुषोत्तम, रामचंद्र को मानना बड़ा आसान है, प्रेम बहुत प्रेम है, एक आदर्श, एक आदर्श, हर एक चीज में आदर्श, आदर्श पुत्र, क्या पुत्र, आदर्श पति, पत्नी के संरक्षण के लिए युद्ध करने के लिए तैयार, पूरा दुनिया को हिला दिए, बस एक आदर्श राजा, एक आदर्श शिष्य, क्या वाल्मीकि की, अरे विश्वामित्र की क्या सेवा किया उन्होंने, पैर दबाना, उनको सुलाना, अच्छे तरह से सेवा करना, वाल्मीकि मुनि के एक आदर्श तरीके से एक शिष्य के रूप में किस तरह गुरु की सेवा करनी चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, सब चीजों में आदर्श। तो डायरेक्टली वाल्मीकि ने पूछा, इस संसार में आज के दिन कौन ऐसा व्यक्ति है, अब नारद मुनि भी टाइम पास नहीं किए, सीधा पॉइंट पे आ गए और 100 श्लोक के अंदर रामायण के प्रथम अध्याय बालकांड का, बाल रामायण कहते हैं उसको, 100 श्लोकों के अंदर पूरा रामायण सार में बता दिया, सिनॉप्सिस, समरी, उसको बाल रामायण कहते हैं। और वो जो समझ गया पूरा, पहला अध्याय, सब प्रसंग, मुख्य प्रसंग सब आ गया उसके अंदर, मतलब एक एसेंस बता दिया, सार बता दिया, वो बोल के चले गए बस। तो ये पहला अद्भुत चीज, सुबह सुबह नारद मुनि आ गए और सीधा डायरेक्टली प्रश्न पूछा, उसका उत्तर दे दिए, रामायण सुना दिए, चले गए। चले जाने के बाद फिर वाल्मीकि मुनि अपने शिष्य भारद्वाज के साथ कमंडलू लिए और स्नान के लिए तमसा नदी में चले, और तमसा नदी का वर्णन है अकर्दमम। अकर्दम मतलब एक योगी का शुद्ध हृदय के समान शुद्ध था, उसमें कोई कीचड़ नहीं था, ऐसी नदी तमसा नदी। उसके तट पर उनका आश्रम था, स्नान करने गए और स्नान कर रहे हैं, कमर तक पानी है, मिट्टी वहीं से अंदर से मिट्टी से लेके बाद में स्नान करते, तो कमंडल दिए और स्नान कर रहे हैं। स्नान करते वक्त उन्होंने देखा कि एक क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा, बगुला जैसा बड़ा होता है, तो मादा ऐसे भाग रही है, उड़ रही है, उनके सामने से ऐसे गई हो, उनके सामने से उड़ते उड़ते, और उसके पीछे पीछे नर जो है पक्षी वो भी उड़ते उड़ते गया। उनका आपस में प्रेम चल रहा था, देख रहे थे नाम विश्व वाल्मीकि, और प्रकृति का सौंदर्य देख रहे थे, क्या भगवान ने सृष्टि बनाया, कितना सुंदर बनाया, ये नर मादा का प्रेम कितना सुंदर बनाया भगवान, हर एक में 84 लाख योनियों में नर है और मादा है, और हर एक का भगवान ने एक बना के रखा है कि सृष्टि को चलाने के लिए, परफेक्ट, पूर्ण मदह पूर्णमिदम पूर्णा पूर्णमुदच्यते, अपूर्णता हमारी बुद्धि में है बस, कि ए इसमें कुछ गड़बड़ी किया, भगवान ने गड़बड़ी किया, नारियल के पेड़ में इतना बड़ा चीज रख दिया, इतने बड़े वट वृक्ष में इतना छोटा छोटा फूल फल, और छोटा सा वेली है उसके अंदर तरबूज, क्या भगवान का भी, बड़ा पेड़ में बड़ा रखना चाहिए, छोटा वेली में छोटा छोटा दाना डालना चाहिए, ऐसा एक राक्षसी डॉक्टरेट डिग्री वाला ऐसा सोच के पेड़ के नीचे सोया था, तब टप करके एक छोटा सा फल उसके नाक के ऊपर गिरा, तब बोला भगवान ने जो भी किया अच्छा किया, अगर तरबूज होता इस पेड़ के नीचे, छांव के नीचे मैं आके सोया हूं, और तरबूज होता और वो मेरे सर पे गिरा होता तो पूर्ण है भगवान, तो इस सृष्टि का देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, वाह कितना सुंदर है, और उसी समय कहीं तो छिपे हुए एक शिकारी ने उस, और आपस में प्रेम कर रहे हैं, और उसी समय उसने उस नर पक्षी को फेंक दिया बाणों से, तो खून से पूरा लथपथ होके वो छटपटा के नीचे गिर गया, और छटपटा रहा था तो तुरंत वाल्मीकि, और वो बेचारी जो मादा पक्षी है रो रही है रो रही है रो रही है, उसको देख के बहुत दुख हो गया वाल्मीकि मुनि को, तुरंत उनके मुख से एक शाप निकला, पर सुंदर श्लोक के रूप में निकला, तो शाप दे दिए, और फिर सोचने, अरे अरे मैं भी तो ऐसे ही था पहले, मैं मेरे मुख से शाप क्यों निकला, मुझे इन चीजों में मग्न नहीं घुसना नहीं चाहिए, सहन करना, ये अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, ये लोग चल रहे हैं बस, क्यों मैं इतना विचलित हो गया, क्यों मैं इतना क्रोधित हो गया, अकर्दमम, इतना शुद्ध हृदय वाला भी, आज मेरे मुख से ऐसा शाप क्यों निकल गया कि तेरा भला नहीं होगा। फिर स्नान किए, स्नान करके आश्रम में आए, दिनचर्या चालू है, पर मन ही मन सोच रहे हैं इस श्लोक के बारे में, बोले श्लोक क्या श्लोक है ये, इतना सुंदर श्लोक, परफेक्ट कंपोजिशन, उसके चार भाग हैं, एक एक भागों में भी 8 syllable एग्जैक्टली, बोले भारद्वाज को बुलाया, बोले सुनो देखो क्या
श्लोक है ये मेरे मुख से निकला, मुझे भी नहीं मालूम कैसे निकला ये। एक दूसरा चमत्कार, एक तो नारद मुनि आए पूर्ण रामायण सुनाया, दूसरा चमत्कार, तीसरा ऐसे प्रसंग से ऐसा एक श्लोक निकला। और सोचते रहे तो वहां ब्रह्मदेव आ गए वहां से, बोले आज क्या एक बड़े बड़े महात्मा लोग आ रहे हैं बिना आमंत्रण के, ब्रह्मा जी आ गए वाल्मीकि मुनि के आश्रम। और तुरंत उठे, प्रणाम किया, ब्रह्मा जी को आसन दिए, बैठे और बोले ये हमारा सौभाग्य है, कुछ आज्ञा है बताइए। बोले हाँ, पहले मेरे पुत्र को भेजा, फिर मेरी पत्नी को भेजा, अभी उसके पीछे मैं आया हूं। पहले पुत्र नारद जी आए, उसके बाद उनकी पत्नी सरस्वती आई तुम्हारे जिह्वा के ऊपर, उनको ढूंढते ढूंढते मैं आया हूं ब्रह्मा जी को। एक आचार्य कहते तो पूरा परिवार सहित आ गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आए और बोले तुम्हारे ये जो श्लोक, ये शोक से निकला हुआ जो श्लोक है, ये श्लोक अपने आप नहीं निकला है, इसी श्लोक के आधार पर अब तुम जो नारद से सुने रामायण, इस रामायण को इसी श्लोक के जो क्या बोलते हैं तरीका है उसका जो छंद छंदस, उसी पर आप रामायण की रचना करो। वाल्मीकि बोले मैं कैसा करूंगा, रामायण कहां कहां क्या हुआ मुझे क्या मालूम, हजारों साल से तो राम अभी राज्य कर रहे हैं, वो कब हुआ कहां कहां गए थे क्या मालूम। बोले नहीं, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं, तुम्हारे मुख से निकला हुआ एक शब्द भी गलत नहीं होगा, ये परफेक्ट सही होगा। ये एकांत में माता सीता के साथ प्रभु रामचंद्र ने क्या वार्तालाप किया, हरेक राक्षसों के हरेक माताओं के मन में क्या चल रहा था, उनकी मन की परिस्थिति क्या, वो बोले एकांत में बैठकर कहां कहां कौन से जगह में ये हुआ क्या हुआ, एग्जैक्टली फुल डिटेल, मतलब जैसा टीवी देख रहे तो भी नहीं चलेगा, टीवी में सिर्फ देखता है तो कुछ कई चीज दिखती नहीं है। बोले डायरेक्टली आप वहां हो और सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, अनुभव भी कर रहे हो, तो फिर तब ये कहकर ब्रह्मा जी चले गए और तब वाल्मीकि मुनि शुरू किए बोलना, शुरू किए बोलना किए, भारद्वाज मुनि देख रहे थे बस, सुन रहे थे, उस समय सब श्रुति श्रुतिधर थे, बोलते जा रहे मालूम पूछे कितना हो गया, 24,000 हो गया, बहुत लंबा हो गया, अभी इसका लिखना है। तो 24,000 श्लोकों में, 7 कांडों में रामायण की रचना वाल्मीकि तत्वदर्शी ने डायरेक्टली उन्होंने देखा, उनकी कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई और तब वाल्मीकि मुनि ने यह रचा। कई साल पहले हम लोग मार्केट में जाते थे, बंबई में मार्केट में क्या बोलते हैं कलेक्शन के लिए, फूड फॉर लाइफ ऐसा कुछ कलेक्शन के लिए, तो एक व्यक्ति ने मुझे एक बात कही, एकाएक मुझे याद आया ये कि कैसे वाल्मीकि का रामायण परफेक्ट है। अभी ये प्रसंग लौकिक लोक कथा है पर समझने वाली बात है, कभी कभी ये बहुत सारे पुस्तक है, कौन सा रामायण पढ़े कौन सा नहीं पढ़े, क्योंकि कई लोगों ने समझाने में बहुत सारे अपने जो साक्षात्कार है अपने कुछ डाला है, बड़े बड़े आप कई सब भाषा में रामायण है, कन्नड़ में तो बहुत सारे रामायण है, फिर तेलुगु में बहुत सारे रामायण, क्योंकि श्री संप्रदाय के बहुत सारे आचार्य, रामायण जानना है तो श्री संप्रदाय के काफी रामायण पे वो अध्ययन किए हैं और प्रस्तुत किए हैं उसको, और
कृष्ण के बारे में गौड़ीय संप्रदाय में खास करके आचार्यों का, विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर, षड गोस्वामी, जिस तरह से उन्होंने अध्ययन करके एक एक चीजों का तात्पर्य विस्तृत रूप से बताया, तो बहुत सारे रामायण है। उत्तर भारत में रामचरितमानस, तुलसी रामायण, तमिलनाडु में कंब रामायण, और इसमें कर्नाटक में तीन चार हैं। कई विद्वान लोगों ने लिखा है, कई दार्शनिक लोगों ने लिखा है, महान आचार्यों ने दिया है, और दुर्भाग्यवश ये सब मिक्सचर हो गया। कई लोगों को अवार्ड मिल गया है, नेशनल अवार्ड, बहुत अच्छा काव्य लिखा है, पर वाल्मीकि को सामने न रखते हुए उल्टा सीधा समझाने के चक्कर में कई चले गए। कुछ लोगों ने उसको थोड़ा वाल्मीकि एकदम टक टक टक, क्योंकि ज्यादा विस्तृत नहीं किए, कई जगह विस्तृत नहीं किए, जितना इतना राम का बाल्य लीला है ही नहीं, सीधा बोल दिया एक दिन विश्वामित्र आ गए बस और राम को ले गए। बाल्य लीला है ही नहीं राम के, न उनको टाइम भी नहीं था, बोले 24,000 में इतना क्या क्या लिखूं मैं, जितना जरूरत है उतना ही लिखे। कई जगह संक्षिप्त रूप में लिखा है, कई जगह थोड़ा लंबा किया है, जैसे जैसे उनको प्रेरणा मिली भगवान से, तो कई जगह उसको विस्तृत रूप से समझाया गया है। पर जब आचार्यों जब लिखते हैं तो डायरेक्टली उसका दर्शन करते हैं, वो तत्वदर्शी न, और जो डायरेक्टली दर्शन कर रहे हैं वो लिखते हैं, तो भले जो वाल्मीकि में रामायण में नहीं है उसका वहां वर्णन हो, दूसरे अलग अलग पुराणों से, उप पुराणों से भी वर्णन है, वहां से सब लेके फिर लिखते हैं, पर सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है, सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है, नहीं तो सिद्धांत के विरुद्ध चले जाते हैं दूसरे लोग। तो इस तरह से बहुत सारे रामायण हैं, पर वाल्मीकि जो रामायण है मूल है ये, और उसको अगर परंपरागत सुनेंगे, ये दो चीज महत्वपूर्ण है, एक तो मूल ग्रंथ और दूसरा उसका तात्पर्य। जो मूल ग्रंथ भी पढ़ेंगे तो भी भ्रमित होने की संभावना है, अगर तत्वदर्शी भी ही इनके निर्देशन में नहीं पढ़ेंगे। तो इस तरह से रामायण की रचना वाल्मीकि मुनि ने किया, और फिर लव कुश को सिखाया सबसे पहले रामायण किस कहां सुनाया, अश्वमेध यज्ञ नैमिषारण्य में अंतिम यज्ञ प्रभु रामचंद्र ने किया, दूसरे सब वही करते थे अयोध्या में, अंतिम यज्ञ नैमिषारण्य में हुआ और वहां लव कुश आए, और पहला पूरा लिखने के बाद पूरे किसको सिखाएं, परफेक्ट छंदस होना चाहिए, परफेक्ट सही तरीके से बोलना चाहिए, जहां ऊपर होना है वहां नीचे होना चाहिए, उच्चारण ऐसा ही होना चाहिए, थोड़ा उल्टा कर दिया तो पूरा उल्टा मतलब आ सकता है। तो बोले किसको मैं सिखाऊं 24,000 श्लोक, किसको गाने की क्षमता है, तो उनको बोले, फिर उन्होंने देखा हाँ लव कुश ही योग्य व्यक्ति, उसका भी वर्णन है लव कुश में योग्यता क्या थी, बड़े नम्र मेधावी, उनको सिखाया, सिखाने के बाद बोले अभी जाओ रामचंद्र को सुना। लव कुश को मालूम नहीं रामचंद्र कौन है, मालूम है माता कौन है, मालूम है कि यही है वो, नहीं उन्हें नहीं मालूम, उन्हें बोले जाओ अभी वहां सुना। और राम सबसे पहले ये रामायण जो है उस यज्ञ, इसमें अश्वमेध यज्ञ का जो यज्ञशाला था वहां लव कुश ने प्रभु रामचंद्र को, रामचंद्र सुनकर आश्चर्यचकित हो गए, सबको बोला अपने भाइयों को, बोले सुन क्या बोल रहे हैं लोग, परफेक्ट, बोले कौन है, किसने बताया, कौन हो आप लोग, कौन है आपके गुरु। और इस तरह से ये रामायण, और हम देखेंगे ऐसे रामायण में जैसे ऐसे ऐसे अध्ययन करते जाएंगे एक चीज ही उभर आता है, जन्म कर्मच में दिव्यम, कौन समझ पाया, भक्तों से मैं सचाचित, तारा समझ गई, तारा को समझ में आ गया, कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जो वाली नहीं समझ पाया, तारा समझ गई, मंदोदरी समझ गई, जो रावण नहीं समझ पाया। और गुणगान करते, कितने सुंदर से वर्णन करते चतुर्भुज स्वरूप भगवान ने दर्शन कराया। तो मुख्य उद्देश्य क्या है रामायण अध्ययन करने का, कि राम के प्रति जन्म कर्म च में दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नहीं। पुनर्जन्म नहीं थी, नहीं होना है तो एक ही तरीका है कि भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो। जितना हम सुनेंगे उनके प्रति प्रेम जागृत होना चाहिए। अंततः वही है प्रेमापमार्थो महा। और एक बार प्रेम हो गया उनके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार। जटायु में और मारिच में क्या अंतर है, एक बार हमारे गोविंद प्रभु बता रहे थे क्लास में, बहुत अच्छा बोला उन्होंने। बोले मारिच रामचंद्र के हाथों मारा गया और मरते वक्त लक्ष्मण लक्ष्मण, और राक्षस है वो, अधोगति हुई उसकी। और जटायु रावण के हाथों मारा गया पर उसी दिन भगवत धाम गया। ये मूर्खता यही थी मारीच की। रावण ने जब धमकी दिया, बोला ए तू अगर हिरण नहीं बनेगा अभी तेरे को मार दूंगा मैं, वो तो बाद में मारेगा तुझे पर मैं अभी मार दूंगा। बोला अच्छा है राम के हाथों मरना, तेरे हाथों से मरने राम के हाथों मरना अच्छा है। राम के हाथों मरा पर रावण की सेवा में मरा। मरते वक्त कम से कम राम का आश्रय लिया होता तो नहीं। रावण ने क्या बोला, लक्ष्मण लक्ष्मण बोलते मरने का, ताकि सीता भेजेगी लक्ष्मण को। लॉयल लॉयल्टी, ये राक्षसों की प्रवृत्ति होती है। मरते दम भी बुद्धि नहीं बदलता। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, दुष्कृतिनो दुष्कृति होने के कारण आराधवम आसुरम भावमाश्रिता, मरते वक्त भी नहीं लूंगा। ये रावण की प्रवृत्ति है, ये आसुरिक प्रवृत्ति है कि मर जाएंगे राम के हाथों मरेंगे पर रावण की सेवा में। पर जटायु रावण के हाथों मरा पर भगवत धाम, डायरेक्टली भगवान लक्ष्मण को बोले अंतिम संस्कार करके उसी दिन भेज दिए ऊपर। तो बार बार यही एक मुख्य चीज उभर आता है, किस तरह से प्रभु रामचंद्र ने परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम योगी। और ये पढ़ने से धर्म के तत्व को जान पाएंगे। और वो धर्म क्या है, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि। जब तक अंततः ये सब धर्म का पालन करने का मतलब क्या है, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज, छोड़ दो इतना सब धर्म त्याग जो मैंने स्थापित किया है। धर्म अलग अलग स्तर के होते हैं, स्त्री धर्म जाति धर्म गुण धर्म देश धर्म वर्णाश्रम धर्म। पर महाप्रभु ने कहा एहो बाह्य, ये सब बाह्य है, आगे कहो और आगे बढ़ो। जब कृष्ण प्रेम में आया, भगवत प्रेम में आया, बोले ये असली चीज है, धर्म का उद्देश्य यही है। और यही उद्देश्य स्थापित करने के लिए प्रभु रामचंद्र आए और दिखाया। भले महाराज गुहा हो जो नीची जाति में पैदा हुआ हो, या हनुमान जैसे वानर हो, या जटायु जैसे पक्षी हो, पर अगर भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया है तो उसका जीवन सफल है। शबरी जैसे वो कोई शबर जात की हो, उसका जीवन सफल है। और कितना भी बड़ा राक्षस ब्राह्मण कुल में जन्म लिया क्यों ना हो, रावण भी कोई ब्राह्मण कुल में था, विश्रव मुनि कश्यप मुनि के इसके ब्रह्मा जी के प्रपौत्र ऐसा कुछ आता, वो मां का थोड़ा असर पड़ गया कैकशी, वहां से थोड़ा ज्यादा असर पड़ गया उसको, भ्रष्ट हो गया। तो बार 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 बार, और ये रामायण पढ़ने के बाद अगर ये निष्कर्ष पे नहीं आए कि रामचंद्र की शरण लो, विभीषण शरणागति, शरणागत हुआ, उसकी जीवन, उसका जीवन सफल हो गया, अंततः ये निष्कर्ष पे नहीं आया तो पूरा रामायण पढ़ने के बाद बोलेंगे राम और सीता में क्या संबंध था। बस ये सब पढ़ने के बाद बड़े बड़े विद्वान लोग इसका तात्पर्य देते हैं पर इसके निष्कर्ष पे नहीं आते। अंत में साबित क्या करते हैं, इस तरह से हम देखते हैं कि राम एक मामूली व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था, बहुत शक्तिशाली था, बस इससे ज्यादा नहीं बढ़ते, या कोई ठीक है कोई महान व्यक्ति था। भगवान ने तो ये प्रभुपाद जी का, मैं सुबह वही सोच रहा था कि सचमुच में हम लोग रामायण का पूरा आस्वादन कर सकते हैं प्रभुपाद जी की कृपा से, परंपरा की कृपा से। नहीं तो जैसा देवामृत स्वामी महाराज जगन्नाथपुरी गए थे, बीमार थे उस दिन, नीचे आए पर उनका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, तो ऊपर जहाँ रूम में लॉज में हम लोग बुकिंग किए थे वहाँ बैठे, और वहाँ टीवी था, उन्होंने चालू किया जगन्नाथ रथ यात्रा का, ये क्या बोलते हैं, रनिंग कॉमेंट्री और रिले, लाइव रिले, तो उन्होंने चालू किया, कॉमेंट्री सुन रहे थे और बोल रहे थे, जो कॉमेंटेटर जगन्नाथपुरी का ही व्यक्ति, बड़ा विद्वान, बड़े बड़े विद्वानों को बोलते आके कॉमेंट्री दो, क्या चल रहा है, ये पूजा का मतलब क्या है, जगन्नाथ जी कौन है, सुभद्रा कौन है, बलदेव कौन है। तो बोल रहा था, बोले कुछ पूरा खिचड़ी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोले जगन्नाथ जी, बलराम, सुभद्रा जो है, सब प्रकार के लोग यहां आ सकते हैं, सबके लिए ये है, जो शैवाइट्स हैं उनके लिए बलराम जी हैं, जो शाक्त लोग हैं उनके लिए सुभद्रा, और जो वैष्णव हैं उनके लिए जगन्नाथ, बुद्ध लोग भी आते हैं, जैन लोग भी आते हैं, उनके लिए ये है, उनके लिए ये है, कुछ है, पर वो असली में कौन है वो नहीं मालूम। तब वो बोल रहे थे कि चक्षुदान दिलो यही जन्म जन्म प्रभु से ही, दर्शन करने के लिए आंख ठीक होना चाहिए ना, अगर दर्शन तत्वदर्शी भी ही, वो हमें अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन चक्षुः उन्मीलितम् येन, हमारे आंखें खोलते हैं। भौतिक रूप से देखना किसी चीजों को, अपनी भौतिक बुद्धि से देखने का प्रयास करना, कभी नहीं समझ पाएंगे। 50 बार रामायण, करोड़ों जन्मों तक रामायण पढ़ लो, कंठस्थ भी हो जाए, कुछ नहीं होने वाला, कंठ में रहेगा वो, उतरेगा नहीं हृदय में, कंठस्थ, कंठ में स्थित, बस अटकेगा, बस हृदय में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हृदय में प्रवेश करना है तो जैसे हम भक्ति भाव चर्चा कर रहे थे पिछले 3 दिन, यही मैं सोच रहा था, ये चतुश्लोकी भगवत गीता, चारों श्लोकों में हृदय की बात आई है, हृदय 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 प्रेम। पहला श्लोक कौन सा है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्वा सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, भाव समन्विता, वो प्रेम करने लगेगा, वो अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सब चीज, हर सृष्टि में हर क्षण में वो मुझे देखेगा, वो स्थावर जंगम ना देखे, ना देखे तार मूर्ति, स्थावर जंगम देखे ना देखे, सर्वत्र होय निज इष्ट देव स्फूर्ति, राम 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 राम, सब जगह राम को देखेगा वो। राम से प्रेम हो गया तो सब जगह हर क्षण राम की कृपा है, रामों राम की कृपा है। इस परिस्थिति में मैं राम को कैसे सेवा करूं, बुधा भाव समन्विता। फिर दूसरा श्लोक क्या है, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च संतुष्टि यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। जब भगवान के बारे में 24 घंटे प्रेममय एक दूसरे से चर्चा करेंगे, संतुष्यंति च, संतुष्टि आएगी हृदय में और रमंती शा आनंद, दो चीज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं पिछले तीन दिन से, भावना भगवान के प्रति, हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। बुद्धि से नहीं समझ पाए चलेगा, नहीं समझ पाए कम बुद्धि वाले, अंगूठा छाप है, पढ़ना लिखना नहीं आता, गुरु ने कहा इसीलिए बोल रहा हूं पर समझता कुछ नहीं है, फिर भी तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वकम प्रीति मतलब प्रेम में, तेषाम सतत युक्ताना 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति, भजताम प्रीतिपूर्वकम प्रेम से जो मेरी सेवा कर रहा है, बुद्धिमान नहीं है अंगूठा छाप है, तदामी बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि दूंगा किस तरह से कार्य करना है, हृदय से बुद्धि दूंगा, सर से बुद्धि नहीं दूंगा, हृदय से बुद्धि दूंगा उसको, ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति थे, वो मेरे पास आएगा वो। क्यों? तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमह नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानधीपेन भास्वता। आत्मभाव, अगेन ये शब्द भाव, आत्मभावस्थ जिसने भगवान को अपने हृदय में रखा है, चतुश्लोकी भागवत गीता है ये, चतुश्लोकी भागवत में भी यही है, चतुश्लोकी भागवत में भी यही है, रामायण में यही है, भागवत में यही है, महाभारत में यही है। इसीलिए बोलते हैं, थोड़ा हास्य इसमें बोलते हैं, रात सुबह सुबह द्यूत प्रसंग को पढ़ना चाहिए, दोपहर को स्त्री प्रसंग और शाम को चोर प्रसंग, ये दोनों तीन तीनों चीज माना है ना, द्यूत स्त्री और द्यूत प्रसंग यानी महाभारत, सुबह महाभारत पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सारा महाभारत एक चीज द्यूत क्रीड़ा जो हुआ उसका पहले सारा वहां कल्मिनेट हुआ और उसके बाद में जो हुआ इसका परिणाम हुआ, तो महाभारत द्रौपदी का वस्त्रण हुआ द्यूत प्रसंग में, वहां से ही शुरू हो गया। फिर स्त्री प्रसंग रामायण, इसमें स्त्रियों का बहुत बड़ा हाथ है, पूरे रामायण के दो कारण दो स्त्री थी, रामायण अयोध्या में ही खत्म हो गया होता, पहला मोड़ एक मुड़ाया वो थी मंथरा और कैकेयी, ठीक है वो भी जाके दंडकारण्य में रह के आ गए होते, दूसरी नाक बढ़ा के लंबे और नाक वाली आ गई, नाक अड़ाई उसने सीता और राम के बीच शूर्पणखा, और लक्ष्मण को नाक काटना पड़ा, बहुत घुसा रही तू, नाक घुसा रही थी उनके बीच में, नाक काटना पड़ा, उससे और लंबा हो गया रामायण सबसे। स्त्री प्रसंग कई कई उसी से द्वारा पूरा तो रामायण हो गया, मंथरा के द्वारा हो गया, और स्त्री प्रसंग इसमें जो है शबरी की गुरु निष्ठा, शबरी का प्रेम, मंदोदरी की किस तरह से जो डांटती है रावण मरने के बाद विलाप करती है, पर एकदम शास्त्रिक विलाप करती है, मूर्ख मुझे मालूम था तेरा ऐसा होने वाला, कोई आश्चर्य नहीं, कितना बार बोली तेरे को सुधरा नहीं तू, आपकी गलती नहीं है प्रभु, दोष नहीं देती है, कभी कभी दोष देते हैं ना, जिसने मर्डर किया उसको गाली देते, कभी नहीं, उनको प्रणाम करती है इसको गाली देती है, बोला इस मूर्ख को, वाली को भी यही बोलती है वो तारा, एक एक स्त्रियों का भी, सीता सीता देवी की निष्ठा और मांडवी का और शुतकीर्ति का, इनका नाम भी किसी को नहीं मालूम रामायण पढ़ने के बाद कि भरत और शत्रुघ्न की पत्नी का नाम क्या था, क्या त्याग किया उन्होंने, कोई भी कम नहीं, भरत और लक्ष्मण से कोई कम नहीं, पर उनका नाम भी नहीं आता वहां, कहीं ढूंढने से पता चलता है कौन है उनके, कहां की थी वो सुमित्रा, क्या चरित्र है सुमित्रा का, एक एक स्त्रियों को भी लेंगे रामायण में और उनके अगर चरित्र को अध्ययन करेंगे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। स्त्री प्रसंग और रात को चोर प्रसंग यानी कृष्ण लीला भागवतम, न केवल उन्होंने मक्खन चोरी किया और सारी चीजें चोरी की, गोपियों का वस्त्र चोरी किया, पर उस लीला से सबके हृदय को चोरी कर लिया। तो ये तीन ग्रंथ जो हैं, महाभारत, रामायण और भागवत, सुबह दोपहर और शाम पढ़ते रहो, जीवन सफल। हरे कृष्ण। शाम को ऐसे कुछ चरित्र के बारे में, एक एक का कोई चरित्र लेकर, इसका अंत नहीं है। रामायण के बारे में समुद्र जैसा है, कौन से छोर पे खड़े होके कहां मतलब सैंपल लिया तो कुछ और ही निकलता है वहां से। खास करके मैंने बाहर बड़े बड़े विद्वानों को, भक्त जब ऐसे घुसते हैं और उसका रेलेवेंस आज की दुनिया में, इसीलिए भागवत, रामायण और ये महाभारत जो है बच्चों को पहले से सिखाया जाता था ये, क्योंकि एक जो समझ गया उसको और कुछ कैसे एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ अलग से सिखाने की जरूरत नहीं, विज्ञान सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छे तरह से ये विज्ञान को सिखाया जाए तो इतिहास सिखाने की जरूरत नहीं। इतिहास क्यों सीखते हम लोग, इतिहास को दोहराओ मत, अच्छे इतिहास को दोहराना चाहिए, बुरे इतिहास को दोहराना नहीं है। तो यहां सारे इतिहास, इतिहास का सार यहां है, भूगोल का सार यहां है, धर्मशास्त्र का सार यहां है, अर्थशास्त्र का सार, अयोध्या का वर्णन है रामायण में, समृद्धि में कैसी थी, रावण इतना शक्तिशाली होने में शक्ति उसकी ताकत नहीं थी अयोध्या पर आक्रमण करे, क्योंकि अयोध्या में वर्णाश्रम धर्म सही तरह से होने के कारण संपूर्ण रूप से समृद्धि और सुखी थे सब लोग। केवल समृद्धि नहीं, समृद्धि तो अमेरिका में भी है, कोई लोग सुखी नहीं, सब मर रहे, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए, ऊपर से छलांग मार के सुसाइड कर लिए। रोड अच्छा था, अयोध्या का वर्णन है, रोड अच्छा था, पेड़ पौधे थे, वो भी है अमेरिका में, लोग कैसे थे, किसी के घर में ताला नहीं लगता था क्योंकि सब संतुष्ट थे, किसी की चोर की चरी जरूरत नहीं थी, किसी के पास कोई ऐसी चीज की कमी नहीं थी, और हर एक व्यक्ति अपने अपने वृत्ति में लगा हुआ था और संतुष्ट था। तो राजनीति का ज्ञान जो है परफेक्ट है, एक आदर्श राजा का क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो भी अच्छे तरह से वर्णन है। मंथरा, कैकेयी, अच्छे से अच्छे लोग किस तरह से भ्रमित हो जाएंगे अगर संग सही नहीं रहा। तो मनोविज्ञान, लोगों के साथ व्यवहार ज्ञान, सब कुछ इसमें है, सिर्फ उसको अच्छे तरह से सिखाने वाले की कमी है बस। अंगूठा छाप क्यों ना हो, अगर ये तीन ग्रंथ जानता है तो फिर हमें मालूम है किस तरह साथ में रह सकते हैं, और नहीं तो फिर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। केवल प्रेम जो है बांध सकता है, केवल धर्म जो है लोगों को बांध सकता है, आपस में पास ला सकता है, राम राज्य बना सकता है। पर राम को केंद्र में रखा तो ही, जिस दिन कैकेयी ने राम को केंद्र में नहीं रखकर अपने पुत्र को केंद्र में रखी, या अपनी इच्छा को केंद्र में रखी, अयोध्या का ध्वंस हो गया, उसके हृदय में राम राज्य चला गया। तो सब कुछ सीखने को मिल जाता है अगर ये तीन चीज, ये तीन ग्रंथ। इसीलिए इन ग्रंथों का अध्ययन करना और श्रवण करना, रामायण कुछ जगह में तो नौ दिन का पूरा कथा होता है, एक एक महीने भर का रखते हैं, एक एक सात कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर युद्ध कांड, और फिर उत्तर कांड। पूरी राम कथा बहुत सुंदर से शुरू होती है अयोध्या कांड है, बाल कांड से, कितने बहुत मधुर है ये कथा, ऐसे बहती जाती है। राम कथा है ना, आराम से बैठ गया तो समझता ही नहीं। मैं तीन चार दिन से सुन रहा हूं महाराज जी का राम, केवल कथा बस, सिर्फ कहानी बोलते रहो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, तात्पर्य भी देने की जरूरत नहीं, सिर्फ सुनते रहो, इतना हृदय को आनंद और तृप्ति मिलती है। भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है और आसुरिक गुण जो हैं उनके प्रति द्वेष बढ़ता है। द्वेष बढ़ता है मतलब घृणा होता है कि नहीं ये मैं कभी नहीं करूंगा, आह काश भरत जैसा प्रेम मुझ में होता, सुमित्रा जैसा त्याग मुझ में आता, सीता जैसा निष्ठा कि मैं ये त्याग। उसको कोई जरूरत नहीं था जाने के लिए। एक एक व्यक्ति को के अगर व्यक्ति को लेकर थोड़े चर्चा करेंगे तो अद्भुत तरीके से हृदय का मतलब चर्निंग होता है, वो मंथन होता है, वो मंथन होकर अमृत निकलता है। महाराज भी लिखते हैं अपने पुस्तक में कि वो जब राम कथा सुनते थे सब ऐसे सब रोते रहते थे और सब एक साथ हंसते थे और सब लोग गुस्सा हो जाते थे। मतलब भाव समुद्र है, ये भावनाओं के समुद्र है। सब रस हास्य रस चूरपण का ना सब हंसते बैठ आस्वादन करने वाले, सब रस है इसमें। ज्यादातर करुण रस मुख्य जो मेन ट्यून है वो करुण रस है वाल्मीकि को। इसलिए करुण रस निकालने के लिए ही वो प्रसंग जब तीर लगा तो विलाप कर रही है जो मादा करुण पक्षी, वही विलाप है। मंदोदरी का विलाप, तारा का विलाप, ये तीन रानियों का दशरथ महाराज के जाने का विलाप, प्रभु रामचंद्र के जाने का, अयोध्यावासियों का विलाप, ये करुण रस प्रमुख है। पर उसमें भी सब प्रकार के अलग अलग रस बीच बीच में, वीर रस। अरे हनुमान जी का सुंदरकांड पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते। हाँ प्रभु जी दे रहे हमारे प्रेरणा इस बार हनुमान द सुपरमैन वीर रस। हाँ एक बंदर सीधा घुस गया, तहलका मचा देना, क्या धीरज होना चाहिए, जाके खड़ा मुंह पे बोलना, उसको करना करके देख ले, जो करना कर ले, सुधर जाने तो देख। 80,000 लोगों को खत्म कर दिया। हम बोलेंगे दिस इज टू मच, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये दंत कथा। एक तो युग दूसरा है, वो तो समझना चाहिए हमको, युग दूसरा है। वानर लगते थे, ऋषि और अलग अलग लोग रहते थे, पर ऐसा नहीं है। हम देख सकते प्रभुपाद जी, एक हनुमान जाके अमेरिका में आग लगा के आ गए, अमेरिका में जाके अमेरिका के वालों को बोल रहे हैं फूल्स एंड रैस्कल्स, ऑल साइंटिस्ट फूल्स एंड रैस्कल्स, यो निक्सन 1% रैस्कल। किसी की हिम्मत हो जाके अमेरिका में जाके उसके उनको ही गाली देना, सब तुम लोग मूर्ख हो, रैस्कल, शरणागत नहीं हो गए। और बड़े 5th Avenue मेन स्ट्रीट में जगन्नाथ रथ यात्रा करते हुए बैठ के देख रहे, जैसे हनुमान जी को घुमाया ना, देख रहे थे सब। हाँ राम का सेवक, सबको मालूम है राम का सेवक है। और जो वहां का मचाया, क्या अद्भुत, एक व्यक्ति क्या कर सकता है। तो कलयुग में सिर्फ उसका प्रमा जो लीला थोड़ा अलग अलग प्रकार से है, सेम निष्ठा विश्वास। वो भी समुद्र छलांग मार के गए ना हनुमान जी, विश्वास था उनको। मनसा मनस्वी बोले, जिस तरह से बाण से तीर छोड़, आई मीन धनुष से तीर छोड़ते हैं तो कैसे जाते हैं, तो जब धनुष से तीर छोड़ते हैं तो तीर जाके बड़ा काम करता है, पर तीर का वो यश नहीं है। तीर को ऐसा लेके सर के ऊपर किसी को फेंको तो कुछ नहीं होने वाला। तीर जब धनुष में रख के तब छोड़ो, जैसा गोली को बंदूक में रख के तब मारना है। आप गोली जेब में लेके जाओगे, टोंग करके फेंकोगे किसी के सर पे, कुछ नहीं, बंदूक में लगाया तब जाके उसका असर पड़ता है। तो हनुमान जी कहते हैं मैं छलांग मारा ना, राम का नाम जो है वो धनुष था, वो धनुष जो तीर छोड़ा है, इसीलिए मैं छलांग मार के आ पाया। मैं वो शक्ति वहां की है, मेरी नहीं है वो। बोले मैं एक तो सबसे तुच्छ राम के सेना में एक तुच्छ एक व्यक्ति हूं, आधा लंका मैं खुद जला दिया, बाकी छोड़ा हूं सूरत सुधरने के लिए तुम लोगों को, अभी सोचने के लिए, क्योंकि दूध के रूप में आया हूं और जितना काम है उसे ज्यादा नहीं करना चाहिए, पर थोड़ा जितना जरूरत है कर दिया हूं मैं, सैंपल लेके गया हूं, अभी पूरा गोडाउन ला रहे हैं हम लोग। तो इट्स सेम थिंग वी सी, सेम थिंग। वाल्मीकि ने कैसा लिखा, उनको कृपा हुई, बोले ऐसे अद्भुत ग्रंथ, ऐसी तरह से भक्ति वेदांत तात्पर्य प्रभुपाद लिखते गए, बस उनको गुरु की आज्ञा मिली, प्रेजेंटेड इन हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने स्वीकार किया उसको, बस। तो दिस इज प्रैक्टिकल रामायण, हमको सचमुच में ऐसा होता है क्या, सोचने की जरूरत नहीं है, अब हम देख सकते हैं, और आज भी उतना ही लागू है अगर हम इसको गंभीरता से तत्वदर्शी से सुनकर, और जो निष्कर्ष है उसको सही तरह से प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया अगर करेंगे, तो आज भी उतना ही लाभ मिल सकता है जो त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र के उपस्थिति में लोगों को मिला। तो यह हमारा सौभाग्य है प्रभुपाद जी की कृपा से, परंपरा की कृपा से, कि वही चीज हमें मिला है और हम समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे हम लोग। सामने देखेंगे, जगन्नाथपुरी में जाएंगे, जगन्नाथ रथ यात्रा को देखेंगे, खींच के आएंगे, छोड़ा शेंगदाना खा के आएंगे, बोला हाँ, फोटो लेके आएंगे, बोले हम लोग गए थे, पर रथ यात्रा क्या है इसको अंदरूनी मतलब, महाप्रभु के बिना यदि गौर ना हो तो बेकी हो, क्या दिव्य आनंदमय ये रथ यात्रा का मतलब है, किसको मालूम होता परंपरा के बिना, कौन है ये और ये स्वरूप क्यों आया जगन्नाथ जी का, इन्हें लगे क्या अजीब स्वरूप है, क्या आधा बना के छोड़ दिया ना विश्वकर्मा ने, इसलिए ऐसा हो गया, थोड़ा टाइम दिया होता ना महाराज तो ठीक हो जाता, बस। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री रामनवमी महामहोत्सव की जय, निताय गौर प्रेमानंदी।